हरे कृष्ण हर एकादशी को वैष्णवों की महान वैष्णवों की कथा यहां राधा गोकुलानंद मंदिर में चलती है। राजा कुलशेखर तो पिछले कई एकादशियों से दक्षिण भारत के महान वैष्णव संत आलवारों की कथा चल रही है। पहले 6 आलवारों की कथा हो चुकी है और राजा कुलशेखर आलवार इनकी कथा शुरू हो गई थी। पिछली बार हम राजा कुलशेखर के बारे में ये सुन चुके हैं कि उनका जन्म कलयुग के 27वें साल में हुआ, अर्थात करीब 5000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में, आज जो कि केरल देश है। और वो राजा थे तिरुवनंतपुरम तिरुशयन इस राज्य के, जो आज केरल है, और साथ साथ चोल पांड्य इत्यादि इन सब वंशों के भी वो राजा थे। उनका जन्म राज ऋषियों के वंश में हुआ था, जो कि अनंत शयन के जो स्वामी हैं अनंत पद्मनाभ, उनको ही अपना स्वामी मानते थे और अपने आप को कभी भी राजा नहीं मानते थे। अपने आप को भगवान का दास मानते थे और अनंत पद्मनाभ को ही वास्तव में अपने राज्य का मालिक या राजा समझते थे। और ऐसे राज ऋषियों के परंपरा में, वंश में, राजा कुलशेखर शिरोमणि थे। उनके पिता का नाम दृढ़व्रत था। कई साल संतान न होने पर भी वो दुखी हो गए, अनंत पद्मनाभ से प्रार्थना की, अनंत पद्मनाभ की कृपा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जो कि कुलशेखर थे। उनका शिक्षण इत्यादि बड़े अच्छे ढंग से हो गया, आगे चल के बड़े शूर वीर क्षत्रिय राजा भी बने, लेकिन अपने राज कारोबार में इतने उलझ गए कि भगवान के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाए। एक रात उनको एक ऐसा अद्भुत स्वप्न आया जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। और जब वो सुबह को उठे नहीं तो सारे मंत्री वगैरह उनको जगाने के लिए आए, उनके कमरे के भीतर आए, और उस समय राजा कुलशेखर ने उनको सारा वर्णन किया, स्वप्न में उनको क्या दिखाई पड़ा। उस दिन के बाद राजा कुलशेखर का व्यवहार, उनके सोचने का ढंग, उनका बोलने का ढंग, सब कुछ बदल गया। उनके मन में एक प्रकार की विरक्ति उत्पन्न हो गई। ये संसारी और राज, खास करके जो राजा का ठाट होता है, राजा के जो हाथी घोड़े रथ इत्यादि सोना चांदी, इसको सब तुच्छ समझने लगे। साथ साथ ये संसार से घृणा करने लगे और संसारी लोगों से वो दूर रहने का प्रयास करने लगे। हमेशा सोचते कि ये संसारी लोग कितने दुष्ट हो गए हैं, कितने पापी हो गए हैं, तरह तरह के पाप करते हैं केवल अपने काम क्रोध इत्यादि से प्रेरित होकर। और इस प्रकार से वो हमेशा मन में चाहते थे कि कब वो दिन आएगा जब विभीषण की तरह मैं भी मेरे राज्य को त्याग कर चले जाऊंगा। उनके विरक्ति के साथ साथ उनके मन में भक्ति की वृद्धि भी होती रही। केवल विरक्ति होने से कोई लाभ नहीं, लेकिन विरक्ति के साथ साथ आसक्ति भगवान कृष्ण में भी होनी चाहिए, नहीं तो ये जो विरक्ति है ये ज्यादा समय टिक नहीं पाएगा। तो कुलशेखर राजा के मन में भगवान के प्रति भक्ति की भावना जो है ये बहुत तीव्रता से बढ़ते गया। और विशेष करके श्रीरंगम में विराजे हुए रंगनाथ देव के प्रति वो बहुत ही आसक्त थे और हमेशा गहरी सांस लेकर बोला करते थे, कब वो दिन आएगा जब मैं ये सब झंझट छोड़कर मैं रंगनाथ की सेवा में रत रहूंगा। और क्योंकि ये बार बार ऐसा बोलते और योजना भी बनाते हैं वहां जाने के लिए, इसलिए सारे राज्य भर में ये अफवाहें फैलती गईं कि आज राजा जाने वाले हैं, आज राजा जाने वाले हैं। और इस प्रकार से कई दिन बीत गए, उनकी भक्ति की भावना बढ़ती गई। कभी वो चाहते, कभी भारी सांस, गहरी सांस लेकर कहते कि मैं रंगनाथ की सेवा करने जाऊंगा, कभी दूसरे कोई तीर्थ स्थान की बात करते कि मैं वहां पे जाऊंगा, कभी किसी तीसरे तीर्थ स्थान के बारे में। इस प्रकार से एक नहीं तो एक तीर्थ स्थान में जाने के लिए वो हमेशा आतुर रहते और हमेशा वैष्णवों का संग वो पसंद करते। इस तरह से कई दिन जब बीतते जा रहे थे और उनके मंत्रियों ने देखा कि ये अभी ज्यादा ही भक्ति में बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको काफी चिंता होने लगी कि क्या किया जाए। अगर हमारा राजा जो है ऐसे लापरवाही करेगा राज कारोबार के प्रति और केवल भगवान के पीछे भागता रहेगा तो राज्य चलेगा कैसे। लेकिन राजा कुलशेखर ने ज्यादा परवाह नहीं की इनकी। रोज अपने दरबार में वो शास्त्रों की कथा सुनते थे और तरह तरह के पंडित आते थे और तरह तरह के शास्त्रों का पाठ करते थे। विशेष करके रामायण उनको ज्यादा प्रिय था और श्री राम के प्रति उनकी भक्ति की भावना ज्यादा तीव्र थी। और अलग अलग भक्त वहां आके ऐसे रामायण का पाठ करते। कभी कभी उस रामायण के कथा में इतने मग्न हो जाते कि उनको ये पता नहीं चलता कि बाहरी दुनिया क्या है और उनके अंदर की दुनिया क्या है। और एक बार ऐसे हुआ कि जब रामायण की कथा में वो प्रसंग चल रहा था जब श्री रामचंद्र श्री लक्ष्मण और सीता देवी के साथ दंडकारण्य में निवास कर रहे थे, जनस्थान नाम की जगह में, जहां पर कि शूर्पणखा ने श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे। और उस समय श्री लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे, तो उस समय शूर्पणखा क्रोधित होकर अपने भाइयों के पास गई थी खर और दूषण, और उन्होंने 14,000 राक्षसों को भेजा था, खुद भी आए थे, और अकेले श्री राम ने उनसे युद्ध करके उनका वध कर दिया था। तो जब कथा करने वाले ब्राह्मण ने इस प्रसंग तक पहुंचकर इसके ऊपर व्याख्या करना आरंभ किया, तो राजा कुलशेखर बहुत ही उत्तेजित हो गए और विशेष करके एक शब्द सुनकर एकश्च कि श्री राम अकेले हैं और 14,000 चतुर्दश सहस्राणी 14,000 राक्षसों के साथ वो युद्ध कर रहे हैं, तो भाव भोर हो गए, अपने आप को भूल गए और तुरंत अपने सेना को लेकर जनस्थान की ओर बढ़ने लगे कि राम अकेले नहीं है, हम उनकी रक्षा के लिए हैं। हालांकि भगवान के पास उनका चक्र गदा इत्यादि है, लेकिन उनके साथ में उनके भक्तों की भी कमी नहीं है। और सारे सेना को लेकर निकल पड़े और उस समय सारे मंत्री लोग सोचने लगे क्या किया जाए। आखिर में उन्होंने एक युक्ति सूझी और उन्होंने सेना के एक भाग को आगे भेजा और उन्हें कहा कि उल्टी दिशा में चले आओ, किसी स्थान में राजा से मिलो और उनको कहो कि खुशखबरी है कि प्रभु रामचंद्र ने जनस्थान में सारे 14,000 राक्षसों का वध कर दिया है। तो उन्होंने ऐसे खबर दी तो राजा का मन शांत हुआ, वापस चले आए। इस तरह से उनके दिन बीतते थे। और जैसे प्रसंग होता था रामायण की कथा में उस दिन में, उस तरह का उत्सव सारे राजधानी में मनाया जाता था बड़े धूमधाम से। सारे वैष्णवों को, सारे लोगों को प्रसाद का वितरण होता था, दान होता था। फिर जो उनके राजमहल में श्री रामचंद्र की मूर्ति थी, सीता राम की मूर्ति थी, उनको शोभा यात्रा में निकाला जाता था पालखी में। और इस तरह से हर दिन एक उत्सव हुआ करता था। तो राजा तो केवल उत्सव मनाने में और भगवान का गुणगान करने में दिन रात बिताते थे और सेनापति इधर चिंतित। तो यहां तक पिछली बार की चर्चा चली थी आपके, अब इस बार केवल संक्षिप्त रूप में बताया। तो जब मंत्रियों ने ऐसे देखा कि ये राजा की दशा है, तो उन्होंने जो पाठ करने वाले ब्राह्मण थे रामायण का पाठ करने वाले, उनसे कहा कि आप जरा सावधान रहिए। तो ब्राह्मण बड़े चतुर थे, वो जानते थे कि किस बात को दबा के रखना है कथा में, किस बात को बढ़ा के बोलना है, बढ़ा के मतलब विस्तार से बोलना है। तो जब कोई दुख का प्रसंग आता था तो उस बात को वो कथाकार जो थे वो या तो बोलते ही नहीं या तो बिल्कुल बस एक वाक्य में बोल के समाप्त कर देते, क्योंकि वो जानते थे कि राजा का भाव क्या है। अगर कोई दुखद या कठिनाई की परिस्थिति का वर्णन वो ज्यादा विस्तार में करते तो फिर से भाव विभोर होकर राजा ऐसे कुछ कर बैठते जैसे वो जनस्थान प्रसंग में हुआ था। और जब भी कोई खुशी या कोई आनंद का प्रसंग होता था तब वो उस पर विस्तार में चर्चा करते, राजा बड़े खुश हो जाते, धूमधाम से उत्सव मनाते, लेकिन कम से कम वो राजधानी में तो रहते। लेकिन एक दिन ऐसे हुआ कि जो पाठ करने वाले ब्राह्मण थे उनको कहीं काम से बाहर जाना पड़ा और उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम जाके पाठ करो। अब ये जो बुजुर्ग ब्राह्मण थे उनको मालूम था कि कैसे राजा का स्वभाव है, कौन से कथाएं जो हैं वो छुपा के बोलने चाहिए कौन से नहीं, लेकिन इस पुत्र को नहीं मालूम था कि राजा का स्वभाव कैसे है। तो रामायण में जैसे है वैसे वो बोलने लगे। ऐसा कथा करते करते एक दिन ये प्रसंग आया कि जब सीता देवी का अपहरण होने वाला था। अब राजा कुलशेखर का भाव जो है ये भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो आश्चर्यजनक है, परंतु भक्तों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतना आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भक्ति की तीव्रता ही इतनी होती है कि व्यक्ति को वो अपने बाहरी अस्तित्व को भुला देता है। जैसे जैसे कि जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ रासलीला कर रही थीं और श्री कृष्ण रासलीला के स्थली को छोड़कर चले गए तो गोपियां विरह में इतने दुखी हो गईं कि कृष्ण लीला में ही वो मग्न हो गए इतने कि वो कृष्ण लीला जीने लगे, वास्तव में उसको जीने लगे। और एक गोपी कृष्ण बनती और एक गोपी पूतना, फिर वो लीला करते पूतना वध की लीला, फिर एक गोपी शकटासुर की लीला का की भूमिका धारण करते और दूसरी गोपी कृष्ण का। इस तरह से जितने भी कृष्ण की लीलाएं थे जिनमें कि उन्होंने असुरों का वध किया तो एक गोपी वो असुर बन जाती और दूसरी गोपी कृष्ण बन जाती और वो सारे लीला को उसका जो है वो नाटक के रूप में कर देती और वास्तव में इतने मग्न हो जाते कि इनका सारा दिन ऐसे बीतते रहता। कभी कभी ग्वाल बालों के साथ जब श्री कृष्ण बलराम गायों को चराते तो वो लीला करते। इस प्रकार से कृष्ण के विरह में उनकी भाव ऐसे हो गई थी कि वो उस लीला में पूरी तरह से मिल गए, जुड़ गए उससे और उस लीला में न केवल मग्न हो गए लेकिन उस लीला को जीने लगे। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी जब रामनवमी आ जाता तो हनुमान के भाव में लीला करते और सारे भक्त जो है वानर सेना बन जाते। नित्यानंद प्रभु भी जब बचपन में लीला करते खेलते अपने मित्रों के साथ तो ऐसे ही शास्त्रों की लीलाओं को वो करते, तो पूरा भाव विभोर हो जाते थे। ऐसे चैतन्य लीला में भी एक और एक घटना हम देखते हैं कि जब महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे संन्यास लेने के बाद तो वो दक्षिण मथुरा शहर में पहुंचे जो आज मदुरई के नाम से जाना जाता है, और वहां पर उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई जो एक बहुत शुद्ध भक्त थे श्री रामचंद्र के। उस ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर बुलाया प्रसाद के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु वहां दोपहर 12 बजे पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि यहां कुछ भी तैयार नहीं है, तो उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि क्या बात है, आपने मुझे प्रसाद के लिए बुलाया लेकिन आपने रसोई करना आरंभ भी नहीं किया। तो ब्राह्मण प्रभु राम के भावावेश में थे, अपनी दुनिया में थे, भक्ति की दुनिया में थे, तो वह बोलने लगे हम तो जंगल में निवास कर रहे हैं, मतलब वो प्रभु रामचंद्र के वनवास के समय लीला में अभी मग्न हो गए थे। तो वो बोलने लगे हम तो अभी जंगल में रह रहे हैं और लक्ष्मण अभी गए हैं कंदमूल वनस्पति लाने के लिए जंगल से, जब वो लेकर आएंगे तब सीता देवी रसोई करेंगी तब भोजन तैयार होगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को बड़ा बड़ी प्रसन्नता हुई ये उत्तर सुनकर, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी भोजन तो लेना है। तो फिर किसी न किसी तरह से ब्राह्मण ने रसोई करना जो है वो आरंभ किया और 3 बजे दोपहर के चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने प्रसाद खिलाया। जब चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ले रहे थे तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण नहीं ले रहे हैं और उनका चेहरा काफी उदास दिखाई पड़ रहा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप मेरे साथ में प्रसाद क्यों नहीं ले रहे हैं और आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं, क्या बात है? तो वो ब्राह्मण कहने लगे कि मेरे लिए कोई जीने का कारण अब नहीं रह गया। मैं तो विचार कर रहा हूं कि जल में या अग्नि में प्रवेश करके मैं अपने प्राण को त्याग दूं। तो महाप्रभु ने पूछा कि ऐसी क्या बात हुई है कि आपको ऐसे करना पड़ रहा है? देखो देखिए बात ऐसी है कि सीता देवी जो कि सारे विश्व की जननी है, स्वयं लक्ष्मी देवी हैं, उनका स्पर्श रावण जैसे दुष्ट असुर राक्षस ने किया है। ये बात मेरे लिए असहनीय है और इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। और हालांकि मेरा शरीर जल रहा है फिर भी मेरा प्राण छूट नहीं रहा है शरीर से, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बड़े कोमलता से उनको सांत्वना दी और कहने लगे कि अरे ब्राह्मण, आप तो बड़े विद्वान पंडित हो, आपको सोच विचार करके कार्य करना चाहिए। देखिए सीता देवी कौन है, वो तो स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र की पत्नी है। जैसे श्री रामचंद्र सच्चिदानंद हैं, सीता देवी भी सच्चिदानंद हैं। उनका शरीर तो पूरी तरह से आध्यात्मिक है, कोई भौतिक शरीर से व्यक्ति सीता देवी के आध्यात्मिक शरीर को देख भी नहीं सकता, तो कोई भौतिकवादी व्यक्ति उनके शरीर को स्पर्श भला कैसे कर सकता है? सत्य तो यह है ब्राह्मण कि जब रावण सीता देवी का अपहरण करने के लिए आया तो सीता देवी वहां से ओझल हो गई, अदृश्य हो गई और उन्होंने अपना एक भौतिक माया का रूप रावण के सामने प्रस्तुत किया, प्रकट कराया और इस नकली माया सीता का अपहरण रावण करके ले गया, ये जान लो। तो वो ब्राह्मण को, ब्राह्मण के मन में चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत श्रद्धा थी, इसलिए किसी न किसी तरह से उनका मन शांत हो गया, उन्होंने बात मान ली और इसलिए फिर उन्होंने भोजन प्रसाद स्वीकार कर लिया और उस ब्राह्मण की जान बच गई, नहीं तो वो आत्महत्या करने ही वाले थे। तो चैतन्य महाप्रभु फिर आगे दक्षिण भारत की यात्रा में गए। चलते चलते फिर वो रामेश्वरम के पास आए, वहां से सेतु बंध गए, सेतु जहां पे सेतु या पुल बांध लिया था श्री राम ने, और वहां पे धनुष तीर्थ में स्नान करके जब वो सेतु बंध में आए, वहां कई ब्राह्मण कूर्म पुराण का पाठ कर रहे थे। तो कूर्म पुराण के एक प्रसंग जो चल रहा था वो वही था कि ब्राह्मण पाठ करने लगे, कूर्म पुराण से पढ़ रहे थे वो, कि जब रावण सीता देवी का अपहरण करने के लिए आया तो सीता देवी ने अग्निदेव से प्रार्थना की और अग्निदेव वहां पर तुरंत आए, उन्होंने सीता देवी का शरीर आच्छादित कर दिया अपनी शक्ति से और सीता देवी को वो शिवजी की पत्नी पार्वती देवी के निवास स्थान में ले गए और वहां उनको छोड़ दिया। और फिर यहां पर उन्होंने एक नकली माया रूप या एक भौतिक शरीर वाली सीता देवी को प्रस्तुत किया, जो असली सीता देवी नहीं है, नकली है, माया सीता, उनको प्रस्तुत किया। और जब श्री रामचंद्र लंका पहुंचे, उन्होंने रावण का वध किया, सीता देवी को वापस लेकर आए, तो जब श्री रामचंद्र जी ने सबके सामने सीता देवी को स्वीकार नहीं किया तो सीता देवी ने अग्नि परीक्षा को स्वीकार करना ठीक समझा, अग्नि में प्रवेश कर गई। उस समय अग्नि देवी ने माया सीता को फिर से ले जाकर पुनः उस मूल सीता को, आध्यात्मिक सीता को पुनः वहां पर प्रकट कराया। तो यह कूर्म पुराण का वो प्रसंग था, कई श्लोक थे। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत आनंद आया, उन्होंने उन ब्राह्मणों से निवेदन किया कि कृपया मैं इसकी प्रति निकालना चाहता हूं, प्रतिलेख करके मैं ले जाना चाहता हूं साथ में, लेकिन जो मूल पोथी के जो पन्ने हैं मैं उन्हीं को ले जाना चाहता हूं, क्योंकि वो जानते थे कि वो ब्राह्मण को दिखाना है तो वो मूल पोथी से ही दिखाने चाहिए, जो ओरिजिनल मूल जो पन्ने हैं वो ही निकालना चाहते थे, उन्होंने ले लिए और उनके प्रति बनाकर जो है वो उनको दे दिए। अब वापस लौटते समय फिर से वो जब मथुरा आए, दक्षिण मथुरा मदुरई, तो उस ब्राह्मण से मिले और उस ब्राह्मण को उन्होंने ये श्लोक दिखाए कूर्म पुराण के। ब्राह्मण ने ये पढ़े, वो बहुत खुश हो गए और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दंडवत करके वो रोने लगे और कहने लगे कि आप बड़े कृपालु हैं और मैं समझ सकता हूं कि आप कोई साधारण सन्यासी नहीं हैं, बल्कि आप साक्षात वही श्री रामचंद्र हैं जो आज यहां मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जब भक्त अपनी भक्ति में बहुत तीव्र भावना जागृत करते हैं तो बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया में जो अंतर होता है उसको भूल जाते हैं। हम लोग बाहरी दुनिया में रहते हैं, बाहर क्या चल रहा है हम हमेशा ध्यान से देखते हैं, उस हिसाब से बोलते बैठते उठते हैं, लेकिन भक्त जो होते हैं अपनी अंदर की भक्ति के हृदय की दुनिया में निवास करते हैं, बाहर की दुनिया से ज्यादा संबंध कभी कभी प्रेमावेश में उनसे उनको रहता नहीं है। तो ठीक कुलशेखर के राजा कुलशेखर के साथ में ऐसे ही हुआ करता था, इसलिए वो जनस्थान के पीछे भागे हुए थे। तो इस बार जब उस ब्राह्मण के पुत्र ने ये प्रसंग पढ़ना आरंभ किया कि रावण अभी सीता देवी का अपहरण करने के लिए आया है, तो फिर से राजा कुलशेखर उत्तेजित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए कि अरे ये कैसे संभव है, सीता देवी जो कि हमारी जननी है उनको रावण ले जा रहा है, चलो अभी हमें जाना चाहिए। और वो उठे, अपने सेनापतियों को बुलाया, चलो हाजिर करो अपनी सारी सेना, सारे सैनिकों को बुलाया और धुआंधार भाषण उनको दिया और कहने लगे कि चलो लंका की ओर, हम लंका जाएंगे समुद्र पार करके और वहां पे लंका को भस्म कर देंगे, साथ साथ उस दुष्ट रावण और उसके सैनिकों की हत्या कर देंगे और वहां हमारी माता सीता देवी जो अकेली हैं उनको छुड़वाकर उनको बचाकर फिर से हमारे पिता श्री राम से मिला देंगे, तो चलो। तो उनका भाव जो था साक्षात क्रोध, मूर्तिमान क्रोध, और सारे सैनिक भी कांपने लगे क्या किया जाए, लेकिन जब राजा का आदेश है तो करना है। तो सारे सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र धारण किए निकल पड़े समुद्र की ओर और उनके आगे आगे चल रहे थे राजा कुलशेखर, और ये मंत्रीगण बेचारे बैठे रहे, उनको साहस नहीं रहा कुछ राजा के सामने आके बोलने के लिए, क्यों जानते थे राजा के सामने कुछ बोलेंगे कि शायद राजा उनका ही गर्दन काट देंगे, और ये लोग केवल मुंह खोल के बैठ गए कि क्या बोला, क्या कहा जाए, क्या किया जाए, उनका मन बिल्कुल भ्रमित हो गया। और उधर राजा कुलशेखर चलते चलते समुद्र के तट पर पहुंचे और सीधे समुद्र में प्रवेश कर गए कि रावण मैं आ रहा हूं आ रहा हूं, और अंदर समुद्र में प्रवेश करते करते यहां तक जब तक कि पानी अपने गर्दन तक था वहां तक पहुंच गए अंदर, और मंत्री ने सोचा अब तो क्या किया जा सकता है, अब तो कुछ नहीं, अब कोई आशा नहीं रही, हमारे राजा हमसे चले गए, डूब जाएंगे ये तो राजा। अभी राजमहल में सीताराम की मूर्ति तो थी जिनकी पूजा रोज बड़े भक्ति भाव से राजा कुलशेखर किया करते थे। इस सारे लीला को सारे घटना को सीताराम जी अपने मंदिर से देख रहे थे, हालांकि वो पीछे महल में थे शहर के अंदर और ये काफी शहर के बाहर समुद्र के पास आ गए थे, फिर भी वैसे भगवान को कोई समय या जगह का कोई सीमा नहीं होता है, तो अब वहां शहर में बैठ के भी वो देख सकते थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये आपातकालीन स्थिति निर्माण हो गई है, अर्जेंट मेरा भी मेरी आवश्यकता यहां पर है, नहीं तो कुछ दुर्घटना हो जाएगी, मेरे भक्त को मुझे बचाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, सीता देवी को साथ लिए, और जब राजा कुलशेखर समुद्र में पहुंच गए थे प्राय अभी उनके मुंह तक पानी आ गया था, वो और जा रहे थे बढ़ के लंका की ओर, तो जल के ऊपर चलते चलते दूसरी दिशा से मतलब लंका की ओर से यहां आते हुए राजा कुलशेखर ने सीताराम का दर्शन किया और श्री राम ने राजा कुलशेखर का हाथ पकड़ा और कहने लगे कि हे वत्स सुनो, अब तुम्हारे लिए कोई क्रोध या चिंता की बात नहीं है, मैं अभी अभी लंका से आ रहा हूं, अभी अभी मैंने रावण का वध कर लिया, साथ साथ रावण के सारे सारे सैनिकों को भी खत्म कर दिया और सीता देवी को बचा के लेकर आए। देखो सीता देवी मेरे साथ में है, अब तुम कोई चिंता नहीं करो, सब ठीक ठाक हो गया है, और आओ मैं तुम्हें बचा के ले जाता हूं, इस सागर से उठा के तुम्हें वापस शहर में ले जाता हूं, ठीक उसी प्रकार से कि जैसे मैं इस भवसागर से जीवों को उठाकर मेरे धाम में वापस ले जाता हूं। हाँ ये सही है, भगवान ही अपने भक्तों को जीवों को बचा सकते हैं। जैसे कि वो भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे अनन्य भक्त होते हैं, जो मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते हैं और 24 घंटे मेरी सेवा में बिताते हैं, ऐसे भक्तों के लिए मैं स्वयं उद्धारक हूं। इस भवसागर से जो कि मृत्यु का सागर है, इस सागर से उनको बचाने के लिए मैं स्वयं आता हूं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, तो मैं उनको स्वयं आके बचाता हूं। तो श्री रामचंद्र ने फिर श्री कुलशेखर का हाथ लिया, उनको उठाया सागर से और सीधे उनको शहर के बाहर पहुंचाया, शहर के अंदर छोड़कर फिर वो अदृश्य हो गए। लेकिन अन्यों को यह दृश्य नहीं दिखाई पड़ा, केवल राजा कुलशेखर श्री राम को देख पाए। अन्यों ने सोचा कि राजा ने मन बदल लिया, फिर से आ गए, और इस प्रकार से राजा कुलशेखर वापस आ गए और मंत्रियों को सांस लेना शुरू किया। फिर से ठीक है, अभी राजा है, अभी राज नष्ट नहीं होगा। लेकिन इस घटना के बाद फिर सारे मंत्री एकत्र हो गए, चर्चा करने लगे, अब क्या किया जाए, ये हमारे राजा को क्या हो गया है, कौन सी बीमारी हो गई है। फिर आपस में चर्चा करके एक निष्कर्ष पे पहुंचे, हमारी राजा के बीमारी का नाम है भक्ति, उनको ये भक्ति की बीमारी हो गई है, और इस भक्ति की बीमारी के लिए ये मूल कारण क्या है। कारण, हाँ ये कारण है, ये सारे वैष्णव लोग, इन वैष्णवों की वजह से इनकी बीमारी आ गई और बीमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ये राजा जो है वैष्णवों को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं, सदैव उनके साथ रहना चाहते हैं और उनकी पूजा करते हैं, इसकी वजह से इनकी बीमारी जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसके लिए उपाय भी एक ही है, और उपाय क्या है कि इनको वैष्णवों से दूर रखना चाहिए, इनको वैष्णवों से दूर रखना चाहिए। तो ऐसे सारे मंत्री जो हैं वो सोच रहे थे, लेकिन राजा कुलशेखर का विचार कुछ और ही था। राजा कुलशेखर के मन में वैष्णवों के प्रति श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती गई, बढ़ती गई, और जहां भी वैष्णव होते उनको बुलाते, और इस तरह से वो वैष्णवों के संग संग में दिन रात ऐसे ही बिताते। वो जानते थे कि विशेष करके वैष्णवों की सेवा करने से भगवान की सेवा करने से ज्यादा लाभ मिलेगा, और विशेष करके श्री वैष्णव संप्रदाय में वैष्णव सेवा के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। तो राजा कुलशेखर वैष्णव सेवा के एक मूर्तिमान उदाहरण हैं। तो इस प्रकार राजा कुलशेखर अपने ही दुनिया में रहा करते थे और रोज वहां जाने के लिए तैयारी करते कि कैसे कब वो दिन आएगा जब मैं मेरे इस राज्य को छोड़कर मैं श्रीरंगम में चले जाऊंगा, इस राज को, इस राज में मुझे कोई रुचि नहीं है। वास्तव में जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, चाहे वो राजा भी क्यों ना हो, वो इस संसार के राज्य से बिल्कुल कोई आसक्ति नहीं रखते, कोई लगाव नहीं रखते। उनको उनके भक्ति के जोर पर, उनके भक्ति के प्रभाव पर भगवान के धाम में एक बड़ा राज्य मिलने वाला है, भगवान का धाम ही उनका राज्य होने वाला है। तो देखिए, जो लोग भगवान के धाम के बारे में जानते नहीं हैं, उनको यहां इस भौतिक जगत में राज्य बनाने की इच्छा होती है, लेकिन भगवान कृष्ण के भक्त इतने बुद्धिमान होते हैं कि वो एक ऐसा राज्य बनाते हैं जो कि शाश्वत, हमेशा उनके साथ में रहेगा। तो राजा कुलशेखर श्रीरंगम का सपना देखते रहते देखते रहते, और हर दिन योजना बनाते रहते कि आज जाएंगे, आज जाएंगे, और मंत्रीगण सोचने लगते कि अगर राजा एक बार भी श्रीरंगम चले गए तो फिर वो लौटेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे तो और भी बुरी हालत है। बुरी हालत मतलब क्या? वहां पे तो ज्यादा वैष्णव है, वहां पे तो वैष्णवों के सिवाय और कोई है ही नहीं, सब जगह वैष्णव वहां पर भरे हैं। तो उनकी ये जो भक्ति की भावना है वो श्रीरंगम में जाकर और भी बढ़ते जाएगी, फिर राजा हमारे राज को फिर याद करेंगे ही नहीं, यहां पर लौट के ही नहीं आएंगे। तो ठीक है, जहां ऐसे किसी ना किसी तरह से यहां पे इनको रोक के रखना होगा। तो उन्होंने एक तरकीब सोची कि क्या करना चाहिए इनको यहां पर वापस रखने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि जब राजा निकल पड़ेंगे श्रीरंगम के लिए तो दूसरी ओर से किसी श्री वैष्णवों को भेजना चाहिए और उनको कहना चाहिए वैष्णवों के कि हम कोई अमुक तीर्थ स्थान से आए हैं। तो राजा इन वैष्णवों को देखेंगे, इनसे मिलेंगे, पूछेंगे आप कहां से आए हैं, हम ये इस तीर्थ स्थान से आए। तो राजा सोचेंगे इनको इनकी सेवा करनी चाहिए मुझे, तो फिर वो अपने श्रीरंगम जाने की योजना छोड़ देंगे। और ठीक ऐसे ही हुआ। जब एक बार राजा निकल पड़े श्रीरंगम जाने के लिए अपना सब राज कारोबार छोड़कर, और उस समय मंत्री हमेशा आतुर हमेशा सतर्क रहते थे कि कब राजा निकल पड़ेंगे, और श्री वैष्णव हमेशा तैयार रहते थे कि जाओ उल्टी दिशा से जाओ और आओ। और ऐसे कई बार राजा निकल पड़ते और हर बार अलग अलग दल श्री वैष्णवों के चले आते, उनको देख के फिर से राजा उनका स्वागत करते और उनको बुलाकर उनका उनकी सेवा करते। अब देखिए, राजा कई बार ऐसे निकल पड़ते और हर बार नए नए वैष्णवों को लाया जाता, तो वैष्णवों की संख्या बढ़ती गई। अब यह हो गया कि तवे से अग्नि में जाने की बात हो गई। अभी वैष्णवों की संख्या इतनी बढ़ गई कि सब जगह वैष्णव ही वैष्णव हो गए राजधानी में। और क्योंकि राजा कुलशेखर इतने शुद्ध भक्त थे और वैष्णवों का महत्व जानते थे, वैष्णवों की इतनी सेवा करते थे खुद, तो वैष्णवों के लिए कोई बंधन नहीं था, कोई सीमा नहीं थी, सब जगह आने जाने की अनुमति थी उनके लिए। यहां तक कि राज दरबार में, राजमहल में और राजा के निजी निवास स्थान में भी वो आया करते थे, कभी भी आते थे, कभी भी जाते थे, और राजा कोई भेदभाव नहीं करते, बड़े आतुरता से बड़े प्रेम से उनका स्वागत करके सेवा करते। सड़कों में वैष्णव, चौक में वैष्णव, बाजारों में वैष्णव, महल में वैष्णव, मंदिरों में वैष्णव, सब जगह वैष्णव फैल गए। अब ये सारे मंत्री सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, अब हम राजा को श्रीरंगम जाने के लिए छोड़ेंगे तो वापस नहीं आएंगे, और इधर वैष्णवों को हम लाकर उनको यहां रखने की कोशिश करते हैं तो वैष्णवों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि इनको संभालना मुश्किल हो रहा है, और अगर हमने वैष्णवों को वापस भेज दिया कि आप जाओ यहां से, तो उनके पीछे पीछे राजा भी चले जाएंगे, तो क्या करना चाहिए। फिर ऐसे सोचते सोचते उन्होंने एक तरकीब सोची, ठीक है एक षड्यंत्र रचाना चाहिए हमको, अगर हमने ऐसे कुछ किया जिसकी वजह से राजा के मन में इन वैष्णवों के प्रति जो श्रद्धा है वो टूट जाएगी, तो फिर हमारा काम पूर्ण हो जाएगा, फिर राजा इतने आदर की भावना नहीं रखेंगे इनके प्रति, और फिर यहां राजा रहकर राज कारोबार में अपना मन लगाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि जो राजमहल के अंदर मंदिर है सीताराम का, जहां पर कि श्री वैष्णव ही पूजा करते हैं, भगवान के श्रृंगार के लिए जो मूल्यवान रत्नों का हार है उसको चोरी कर लेना चाहिए और फिर आरोप जो है वो वैष्णव पे लगाना चाहिए, क्योंकि खबर तो पहुंच जाएगी राजा के पास कि ऐसे अनमोल रत्नों का हार जो है वो चोरी हो गया है। तो ठीक ऐसे ही उन्होंने किया, ये षड्यंत्र रचाया और उन्होंने वो अनमोल जो रत्नों का हार है उसको चोरी कर करवा लिया, जानबूझ के उसको अलग से रख दिया, और फिर खबर पहुंचाई गई राजा तक कि चोरी हो गया, मंदिर से चोरी हो गया रत्नों का हार, भगवान का रत्नों का हार चोरी हो गया। और राजा पूछताछ करने लगे क्या हो गया, किसने चोरी किया, कैसे हुआ। तो फिर मंत्री ने बताया कि हमें तो संदेह केवल इन वैष्णवों के ऊपर है, क्योंकि यही तो संभालते हैं, हम लोग कहां जाते हैं पास में, यही लोग पूजा करते हैं, यही लोग सब श्रृंगार करते हैं, इन्होंने ही चोरी किया है। तो राजा ने शांति से सब उनकी बात सुन ली और फिर राजा कहने लगे कि आप लोग वैष्णवों को समझे नहीं हैं, ये इतने महान वैष्णव हैं, ये सब शुद्ध भक्त हैं, जो भगवत प्रेमी होते हैं वो कभी भी इस तरह से चोरी नहीं कर सकते हैं, चोरी की बात दूर है, उनके मन में कोई दुष्ट विचार भी नहीं आ सकता है, तो चोरी कैसे कर सकते हैं, तो आप जो बोल रहे हैं वो सरासर झूठ है और मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, इसको साबित करने के लिए आप एक पात्र लाइए जिसमें कि एक जहरीला कोबरा सांप हो और मैं उस पात्र के अंदर मेरा हाथ डालूंगा, अगर उस सांप ने मेरे हाथ को डस लिया, काट लिया, तो इसका मतलब है कि मैंने जो कहा वो सही नहीं है, आपने कहा जो सही है और वैष्णव दोषी हैं। लेकिन अगर उस सांप ने मुझे नहीं काटा तो फिर इसका मतलब है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है और वैष्णव निर्दोष हैं और आप केवल द्वेष की वजह से उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे राजा के आदेशानुसार वैसे ही कोबरा सांप लाया गया। राजा कुलशेखर ने तुरंत बिना हिचकिचाए हुए अपना हाथ उसमें डाल दिया, काफी समय तक हाथ वहां पर रहा लेकिन कोबरा सांप ने उसको उनके हाथ को डसा नहीं और फिर से उन्होंने हाथ बाहर निकाल दिया और सारे मंत्री जो हैं उन्होंने हार मान ली, उन्होंने जान लिया कि राजा हमारे लिए बहुत है, हम उनका सामना नहीं कर सकते हैं, और फिर उन्होंने अपनी गलती मान ली, सर झुकाकर वहां पर खड़े रहे और जो रत्नों का हार है भगवान का वो लाके उन्होंने राजा के हाथ में सौंप दिया। और राजा क्योंकि वैष्णव थे इसलिए उन्होंने क्षमा कर दिया उन वैष्णवों को, उन मंत्रियों को, और कहा कि आज से तुम्हारा प्रायश्चित ये है कि तुम आप सब भी इन वैष्णवों के सेवक बनो, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपने इतना एक गहरा इल्जाम आरोप लगाया है इनके प्रति चोरी का, ये ठीक नहीं है। तो उनको क्षमा तो कर दिया राजा ने, परंतु अपने मन में राजा को इन मंत्रियों के प्रति एक प्रकार की घृणा होने लगी कि कैसे लोगों के बीच में मैं रह रहा हूं, ये इतने दुष्ट लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं, मुझे इन लोगों के बीच में उठना बैठना पड़ रहा है, क्या मतलब है मेरे जीवन का, मैं तो इन मंत्रियों से तंग आ गया हूं, मंत्रियों की बात तो दूर है, मैं तो इस सारे जगत से तंग आ गया हूं, ये सारे भौतिकवादी लोग जगत में, मैं इनके साथ में रहना एक क्षण भी नहीं चाहता, मुझे ऐसे लगता है कि मैं अग्नि में प्रवेश करूं लेकिन इनके साथ में ना रहूं, इतनी घृणा मुझे हो रही है इनके साथ रहने में। तो उसके बाद राजा ने विचार किया कि अब की बार मैं मेरा निर्णय बदलूंगा नहीं, अब मैं श्रीरंगम जाकर ही रहूंगा। राजा कुलशेखर के पिताजी का नाम था दृढ़व्रत, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी दृढ़व्रत रख दिया। तो अपने पुत्र दृढ़व्रत को उन्होंने राज सिंहासन पर बिठाया, सारा राज कारोबार जो है उस पुत्र के हवाले कर दिया और राजा कुलशेखर ने अपनी पुत्री को साथ लेकर वो श्रीरंगम निकल पड़े कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए ये संसार, मुझे अभी केवल भक्ति करनी है। राजा कुलशेखर की पुत्री वो भी बहुत महान भक्त थी और श्रीरंगम में पहुंचकर राजा कुलशेखर ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करा दिया, रंगनाथ देव से ही करा दिया, भगवान रंगनाथ से ही उन्होंने अपने पुत्री का विवाह करा दिया और फिर काफी समय तक वहां पर वो रहे, रंगनाथ जी की सेवा में रहे और वहां पर रहते हुए उन्होंने कई पंक्तियों की, कई श्लोकों की रचना भी की जिनकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, पेरियार तिरुमोड़ी, और वहां से भी बाद में वो कई तीर्थ स्थानों में यात्रा के लिए चले गए जैसे कि तिरुपति, तिरुमला, फिर चित्रकूट, अयोध्या और वहां के दक्षिण भारत के पास में होने वाले तीर्थ स्थानों में भी वो गए और फिर नम्मालवार के स्थान में जिनकी चर्चा हम कई एकादशी पहले कर रहे थे, तिरुनगरी, वहां पर भी गए और फिर ब्रह्मदेश मन्नार कोली नाम के एक तीर्थ स्थान में गए जहां राजगोपाल स्वामी नाम के विग्रह हैं, भगवान श्री कृष्ण का रूप है, विग्रह का नाम है राजगोपाल स्वामी। तो वहां पर उनकी सेवा में थोड़े दिन रहे, उधर ही उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, 67 से ज्यादा उनकी उम्र थी उस समय और वहां अपना प्राण त्याग करके वो वैकुंठ लोक वापस चले गए और इस तरह से राजा कुलशेखर ने अपने जीवन से हम सबको सिखाया कि भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति भावना किस तरह की होनी चाहिए। राजा कुलशेखर के जो दो प्रमुख ग्रंथ हैं पेरियार तिरुमुरी और मुकुंदमाला स्तोत्र, अगर कोई बार हम श्रीरंगम वगैरह जाएंगे तो मुकुंदमाला स्तोत्र के बारे में वगैरह हम चर्चा कर सकते हैं। कृषि कुल कुलशेखर आलवार की जय। हरे कृष्णा। तो आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
प्रभु जी, ये कुलशेखर आलवार जो थे जब वो भक्ति में थे तो सब मंत्री लोग घबरा गए, तो ऐसा क्यों होता है कि दुनिया में अगर भक्ति में जाते ही माँ बाप भी घबरा जाते हैं और मंत्री भी घबरा जाते हैं, ऐसे बहुत लोग उनसे मतलब डर जाते हैं, क्या बात?
हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। डर हमें कब होता है? जब हमसे कोई मूल्यवान चीज दूर जाने की संभावना होती है तो हम डर जाते हैं। शायद हमारा पैसा हमसे छीन लिया जाएगा, हमारा शरीर हमसे छीन लिया जाएगा, हमारी प्रतिष्ठा हमसे छीन ली जाएगी, ऐसे कुछ होता है तो हमको डर लगता है। तो उसी प्रकार से इस दुनिया में लोग ज्यादातर संसार से और भौतिक चीजों से आसक्त हैं। इस संसार से ज्यादा लोगों को कुछ मालूम नहीं है, भक्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है उनकी, इतना लगाव भगवान कृष्ण के प्रति नहीं है, और कृष्ण भक्ति का आनंद क्या है यह भी उनको नहीं मालूम है। इसलिए उनके लिए संसार ही सब कुछ है, और अगर थोड़ा बहुत विश्वास उनको भक्ति मार्ग में है भी, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं ठीक है भक्ति करो लेकिन संसार भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, ये भी है वो भी है। और वो जानते हैं कि भक्ति ज्यादा करने से क्या होगा कि व्यक्ति संसार से निरासक्त हो जाएगा, और निरासक्त हो जाएगा तो क्या ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि हमको छोड़ के चले जाए, या वो इस व्यवसाय को छोड़े या दुनिया को छोड़े, या फिर व्यवसाय कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, काम कैसे चलेगा, इंद्र तृप्ति कैसे होगी। तो इस प्रकार से लोगों की धारणा रहती है। इसलिए कई कभी जब कोई भक्त भक्ति में आगे बढ़ने लगता है तो अन्य लोग जो होते हैं जो इतने भक्ति मार्ग में नहीं है वो बड़े आनंद से रहते हैं, वो बड़े दुखी हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि कैसे चलेगा अभी हमारा काम। इसलिए लोग ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन जो भक्ति में है वो आनंद में हो जाते हैं। वो कहते ठीक है, अच्छी बात है, अगर हमारे कुटुंब के ये सदस्य भक्ति में आ रहे हैं बहुत अच्छा हो गया, चलो और ज्यादा जाने दो भक्ति मार्ग में। हम अभी अभी शिमोगा से आए तो वहां दो भक्त हैं जो वहां ज्यादा प्रचार का काम संभाल रहे हैं, दोनों डॉक्टर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं लंदन में वगैरह, और न केवल MBBS उन्होंने किया उसके बाद और 7-8-10 साल उन्होंने पढ़ाई की है उसके बाद भी, इतने डिग्रियां हैं उनके नाम के बाद, इतने लंबे लंबे डिग्रियां हैं, इतना सब पढ़ने के बाद भी, इतना उनका खुद का हॉस्पिटल है, सब कुछ है, एक ही लड़का है उनका। और वो डॉक्टर हमसे बोल रहे थे कि हमको भक्ति में इतना आनंद आ रहा है कि हमने हमारे बेटों को बोल दिया है तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुमको डॉक्टर होके यहां संभालना है, तुम ब्रह्मचारी होना चाहते हो जाओ, हमारी पूरी अनुमति है तुम्हारे लिए, तुमको जीवन में सफलता प्राप्त करना है, तुमको शुद्ध भक्त होना है, कृष्ण भक्ति करनी है तुमको, ये हमारी अपेक्षा है तुमसे, और कोई अपेक्षा नहीं है। तो इसका मतलब है जब हमें भक्ति की अनुभूति खुद हो जाती है कि भक्ति का महत्व क्या है हम जान लेते हैं, तब हम ये चाहते हैं कि जिनसे हम प्रेम करते हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा भक्ति में प्रगति करें। लेकिन जब भक्ति का अनुभव और साक्षात्कार और श्रद्धा हमारे अंदर नहीं होती है तब हम सोचते हैं कि जो हमारे ऊपर हमसे संबंधित है उनको प्रगति करना चाहिए, लेकिन ज्यादा तेजी से नहीं, धीरे धीरे से करना चाहिए, ये भी हो वो भी हो, इसलिए ज्यादा लोग घबराते हैं। तो मंत्री लोग सोच भक्ति के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो भक्ति देने का, भक्ति करने का उपाय क्या है, मार्ग क्या है? भक्तों का संग। राजा कुलशेखर अपनी भक्ति में तीव्रता से प्रगति क्यों कर पाए? क्योंकि वो भक्तों के संग को इतना महत्व देते थे और भक्तों के संग में आकर केवल श्रवण कीर्तन करते थे, कृष्ण कथा करते थे। तो हमारे लिए यही मार्ग है, जितना हो सके अगर हम भक्तों का संग करेंगे, हम श्रवण कीर्तन करेंगे, अपने घर में होते हुए भी हम प्रभुपाद जी की किताब पढ़ते रहेंगे, तो हम भी भक्ति मार्ग में अच्छी तरह से प्रगति कर पाएंगे। अगर हमारा ध्यान न लगे भक्ति मार्ग में, फिर भी अगर हम भक्ति के भक्तों के संग में आते रहें तो सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। निष्ठा, श्रद्धा सब हमारे मन में जागृत हो जाएगी। और कोई प्रश्न किसी को?
एक्चुअली जिनका भक्ति बहुत आगे बढ़ा है, भक्ति रसाम सिंधु बताता है, वो भक्ति को बाहर नहीं दिखाता है, मतलब बाहरी तरह से साधारण नौ सकिया भक्त से प्रकट करता है, लेकिन अंदर से वो कुछ वरिष्ठ भक्त और किसी को फॉलो करता है। लेकिन इधर कुलशेखर आलवार को हम देख रहे हैं, वो बाहरी तरह से इतना प्रकट कर रहा है, तो इसको कैसे समझना चाहिए? उत्तम भक्ति में ऐसे भी हो सकता है? नहीं तो
राजा कुलशेखर को मन में ऐसे कोई विचार नहीं था कि मैं भक्ति के लक्षण प्रकट कर रहा हूं, कि मैं दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूं कि लोग समझें कि मैं कितना ऊंचा भक्त हूं। उनका कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं था उनके भावना के ऊपर, उनके नियंत्रण से बाहर निकल चुका था। उनका उनके भक्ति ऐसे बढ़ गई थी, अंदर भाव ऐसे आ गया था कि उस भाव के प्रभाव में वो कुछ नहीं कर पाए। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी गए थे और वहां पे बहुत कीर्तन किया करते थे, सड़क पे नृत्य किया करते थे, तो वहां के जो मायावादी सन्यासियों ने उनको बुलाया और पूछा कि आप तो एक सन्यासी हैं और आप में भी दीक्षा, आपने जो दीक्षा है वो हमारे मायावादी संप्रदाय में ली है, भारतीय संप्रदाय में लिया है, तो सन्यासी का कर्तव्य होता है कि वो वेदांत का पठन करे, तपस्या करे, गंभीर रहे, लेकिन हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि आप तो एक भावुक साधारण व्यक्ति की तरह नृत्य करते हैं सड़कों के ऊपर, गीत गाते हैं, ये तो एक सन्यासी को शोभा नहीं देता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि मैं क्या करूं, मेरे गुरु महाराज श्रील ईश्वर पुरी ने मुझे एक आदेश दिया था कि तुम ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप और कीर्तन करते रहो और तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो उनके आदेश के अनुसार मैंने बस जप करना बड़े ध्यान से शुरू किया, कीर्तन करना शुरू किया, और ना जाने क्यों मैं पागल जैसा हो गया। और जब पागल हो गया तो मैं नाचता हूं, मैं गाता हूं, मैं कूदता हूं, मैं कुछ करता हूं, मुझे पता नहीं चलता मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन मैं बाध्य हो जाता हूं करने के लिए, ये सब मेरे नियंत्रण के बाहर है, तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हरि नाम ही ऐसा है कि मेरे को पागल बना रहा है, इसलिए मैं हरि नाम के जप कीर्तन से मैं पागल हो गया हूं, तो मैं क्या करूं। तो उसी प्रकार से जो भक्त, महान भक्त होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनकी भक्ति की तीव्रता को जन साधारण में प्रकट न करें, लेकिन परिस्थिति कब ऐसी हो जाती है कभी कभी कि उनके नियंत्रण के बाहर निकल जाता है। और इस प्रकार से राजा कुलशेखर बाध्य होकर, ऐसे भाव विभोर होकर, उनको बाहरी चेतना खो गई, अब वो अंदर की दुनिया में रह रहे थे, उस भाव की दुनिया में रह रहे थे वो। जैसे हम चर्चा कर रहे थे गोपियों के बारे में कि जब कृष्ण के विरह में थे तो न केवल लीला को सुन रहे थे लेकिन लीला में जीने लगे वो, उसी प्रकार से राजा कुलशेखर भी उसी लीला में जीने लग गए। उन्होंने कोई अंतर नहीं देखा, भौतिक बुद्धि उनकी रही नहीं रही उस समय, कह रहे श्री रामचंद्र तो त्रेता युग में थे, अभी हम तो कलयुग की शुरुआत में है, अभी कहां श्री रामचंद्र उधर है, कहां वो राक्षस है, उनका वध तो कब से हो गया, ये सब विचार करने, ये तो भौतिक बुद्धि हमारी है, लेकिन वो भाव की बुद्धि से सोच रहे थे, उनके भाव में वो निकल पड़े वहां पर। इसलिए जो चीज वर्जित है वो ये है कि दूसरों को ये दिखाने के लिए कि हम कितने आगे बढ़े हुए हैं, ये जो भावना है, ये जो वृत्ति है वो खराब है। और जहां तक कोई उत्तम भक्त भी है, जहां तक हो सके उन्हें भी कोशिश करना चाहिए कि वो नहीं प्रकट कराए। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी कभी कभी ऐसे भाव विभोर हो जाते, प्रेमावेश में अपने अष्ट सात्विक विकार, अपने भाव को दबा के रखते, जब वो देखते कि कोई अभक्त आ गया है यहां पर, तो उस भाव को, उन लक्षणों को वो दबा के रख देते। ठीक है,
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।
पुलिस भक्त थे तो उनके मंत्री उनके साथी थे, उनका संग मिलता था उनको, मंत्री को, लेकिन फर्क क्यों नहीं पड़ा मंत्री उनको?
हाँ, कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है, भक्तों का संग करने के बाद भी लोग भक्त नहीं बनते। भक्तों की बात दूर है, स्वयं भगवान का संग करने के बाद भी लोग वैसे के वैसे रह जाते हैं। कोई उदाहरण, दुर्योधन, शिशुपाल, दुशासन, इन सब ने भगवान का संग किया, भगवान के साथ में उठे बैठे, परंतु भक्त नहीं बने, बल्कि उनका द्वेष जो है वो बढ़ता गया बढ़ता गया। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि अगर हमारी पात्रता नहीं है भक्तों का संग स्वीकार करने के लिए, अगर हमारे मन में द्वेष है, हम ये नहीं जानते हैं कि भक्तों के संग का लाभ कैसे हमें लेना चाहिए, तो फिर हम भी भक्त नहीं बनेंगे। तो उसी प्रकार से ये मंत्री लोग जो थे, ये बहुत भौतिकवादी व्यक्ति थे और भक्ति क्या है उनको बिल्कुल नहीं मालूम था, उनको रुचि भी नहीं थी, इसलिए वो राजा कुलशेखर की भक्ति को समझ नहीं पाए, उसको जान नहीं पाए और सोचते थे कि एक बीमारी है, किस तरह से राजा कुलशेखर को इस बीमारी से दूर किया जाए। ठीक है,
और एक ये प्रभु जी करोलकर जी का प्रश्न है, मेरे मुंह से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, वो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि राजा कुलशेखर अपनी बेटी की विवाह श्रीरंग जी से किया, एक ऐसा विधि हो सकता है।
प्रश्न ये है कि राजा कुलशेखर ने अपने पुत्री का विवाह रंगनाथ जी से कैसे करा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये विशेष भक्तों की बात है, उस जमाने की बात भी अलग थी। जब हम आंडाल की चर्चा करेंगे तब हम ये देखेंगे कि कैसे आंडाल का क्या संबंध था भगवान श्री रंगनाथ से। और ये भी एक भाव है, उस स्तर पे भी भक्त को होना चाहिए, कृत्रिम रूप से ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो राजा कुलशेखर भी उस स्तर के भक्त थे और उनकी पुत्री भी है वो भी उसी स्तर की भक्त थी, इसलिए ये संभव हो पाया। लेकिन आजकल कोई भी जाकर ऐसे नहीं कर सकता है।